ओम शांति। आप में से कौन ऐसा है जो जीतू भाई को नहीं पहचानते, नहीं जानते हैं? अच्छा, बहुत थोड़े हैं, बाकी सब जानते हैं, है ना? तो जीतू भाई हमारे बाबा के बहुत लाडले और बहुत तपस्वी राजयोगी, ऐसे बाल ब्रह्मचारी और कुमार जीवन में उन्होंने 1977 में ज्ञान प्राप्त किया पूरे परिवार के साथ, और उन्होंने अपने 30 सालों से मधुबन की सेवाएं कर रहे हैं। और जीतू भाई के लिए हम यही कहेंगे कि हमारे नासिक के रतन है, क्योंकि इनका पूरा परिवार नासिक में ही ट्रांसफर हो गया है, और अभी वो नासिक में ही उनका पूरा परिवार होने की वजह से हम यही कहेंगे कि हमारे नासिक के जीतू भाई, भले उन्होंने कहाँ भी ज्ञान लिया हो पर हमारे नासिक के जीतू भाई है। और जीतू भाई जो सेवाएं दे रहे हैं, अभी यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर है इंटरनेशनल, और दूसरी बात है कि जीतू भाई ने अभी जो संकल्प लिया था कि सभी नासिक वाले आने चाहिए, तो ये उन्हों के ही संकल्पों से हम सब यहाँ भट्टी के लिए पहुंचे हैं। वैसे तो आपने सुना राजू भाई के मुख से, 3-3 साल तक नंबर नहीं लगता है भट्टी के लिए, और हमारा नंबर लगा तो ये संकल्पों की ही कमाल है। तो हमारे जीतू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी हम आदरणीय जीतू भाई से विशेष क्लास सुनेंगे। ओम शांति। और एक खुशी यह है कि जीतू भाई का आज जन्मदिन है। तो बड़े दीदी जी अभी आएंगे, आदरणीय दीदी जी आएंगे, और दीदी जी विशेष हम सब नासिक वालों की तरफ से उनको विश भी करेंगे, और साथ साथ राखी बांधेंगे हम बहनें सभी, और साथ साथ उनको मुख मीठा कराएंगे। और ये जन्मदिन की बहुत बहुत हमारी तरफ से अभी भी बहुत सारी शुभकामनाएं।
ओम शांति। मैं नासिक का हूं या आप मधुबन के हो? कौन कौन समझते हैं मधुबन के है? सभी मधुबन निवासी है। संगम युग में ये सर्वश्रेष्ठ समय, पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ समय संगम युग, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ स्थान मधुबन तपोभूमि पांडव भवन है ना। आप लोग 3 दिन यहां रहे, अच्छा लगा ना? किस किस को अपने घर का अनुभव हुआ? नासिक की याद आई क्या? तो अभी यहां की यादें लेकर आप मधुबन को साथ में लेकर नासिक में जाएंगे, है ना? यहां का वो चारों धाम, सवेरे सवेरे सूक्ष्म वतन जैसा वातावरण, उसमें बाबा के कमरे में जाना, बाबा की झोपड़ी में जाना, शांति स्तंभ पे जाना, हिस्ट्री हॉल में, मेडिटेशन हॉल में, वहां जाने के बाद यही चक्कर लगाते रहने। देखो संगम युग में बाबा हमें कितना न हमारा भाग्य से झोली भर देते हैं, कितनी सारी प्राप्तियां हमें होती है ना। दुनिया वालों से अगर कंपेयर कीजिए, दुनिया वालों से भेंट कीजिए अपनी, तो हम कितने भरपूर हैं। सबसे बड़ी बात तो रियल पावर और रियल पीस केवल हम ब्राह्मण बच्चों को ही पता है। बाहर के आत्माएं तो कितनी सारी शक्ति के पीछे भागते हैं, शांति के पीछे भागते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। द रियल पावर ऑफ रियल पीस हमें पता है, और वो भी इस संगम युग में ही स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता बनकर हमें उसकी महसूसता भी कराते हैं, अनुभूति भी कराते हैं। देखो ब्राह्मण बच्चे बाहर से दिखने में तो एकदम सिंपल लगते हैं, यहां सब बैठे हैं ना, सभी एकदम सिंपल रूप से सादे रूप में बैठे, लेकिन अंदर से सभी एनर्जी से भरपूर, एकदम रिचार्ज, और भी भट्टी में तो डबल रिचार्ज हो गए। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा सामने बाहर से सिंपल, लेकिन अंदर से पूरा एनर्जी से भरपूर। अपने आप को कंपेयर कीजिए, मैं जो भी कह रहा हूं, अपने लौकिक के रिश्तेदार, आपके आसपास रहने वाले जिनको बाबा का परिचय नहीं है, जिनको योग अनुभूति का अनुभव नहीं है, उनसे कंपेयर कीजिए कि हम कितने एनर्जी से भरपूर रहते हैं, वो भी पॉजिटिव एनर्जी से। आजकल दुनिया में स्वैग का जमाना है ना, हर कोई अलग दिखाना चाहता है अपने आप को। हमारा भी रियल स्वैग कौन सा है, कौन सा स्वैग है जो दुनिया में किसी को पता नहीं, जो केवल हम लोगों ने उसको जाना है, कौन सा? अपना पहला ही लेसन, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तुम आत्मा हो। ये केवल और केवल बाबा ही हमें बच्चों को सिखाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी कैंपस में, किसी स्टेटस पे पहुंचने के बाद, या इवन सोशल मीडिया में भी ये चीजें सीखने को नहीं मिलेगी, केवल बाबा ही हमको सिखाता है। तो हम सबसे अलग हुए ना, तो जहां भी जाएंगे हम आत्माभिमान स्थिति में स्थित रहेंगे, तो अपने आप ही सबका ध्यान हमारे ऊपर आकर्षित हो जाता है, सबको महसूस होता है कि कोई विशेष आत्मा बैठी है। और वो होता है एक तो आत्मा की अनुभूति, और उसके बाद में हमारा जो मर्यादा है, मुख्य मर्यादा पवित्रता की। तो जो पवित्रता, ब्रह्मचर्य के लिए हम जो नियंत्रण अपने आप पे रहते हैं, स्वयं नियंत्रण, आत्म नियंत्रण, वो हमें अपने आप में पावरफुल बना लेता है। इसलिए हम दुनिया से अपने आप को अलग महसूस भी कर पाते हैं, और सभी हमको भी अलग देख पाते हैं। और इतना परम पवित्र बाबा हमें पवित्रता से भरपूर करके जाता है। लेकिन जैसे ऐसे पवित्र स्थान पर बैठकर, जहां स्वयं साकार बाबा ने अपना पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति बनाई, सभी दादियों ने अपना पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति बनाई, और केवल स्थितियां नहीं बनाई, लेकिन स्थिति बनाने के बाद यहां से ही, इसी स्थान से ही सारे विश्व की सेवाएं शुरू हुई। तो बाबा ने आत्माओं में इस स्थान पर पावर भरी, और फिर उस पावर के आधार से इतनी सेवाएं शुरू हुई जो कितनी लाखों आत्माओं को तक पहुंच गए, और करोड़ आत्माओं तक भी भगवान का परिचय तो पहुंच गया। सबको तो पता ही है ब्रह्मा कुमारी से क्या है। तो इस स्थान की इतनी महत्व है जिस स्थान पर आप बैठे हैं। तो हमें जो प्राप्तियां हुई है, एक तो ये पवित्रता की प्राप्ति, जो दुनिया में कितना आप देखते हैं ना, ब्रह्मचर्य, केवल ब्रह्मचर्य में स्थित रहने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितनी कठिन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन बाबा ने हमको कितना सहज बना दिया, कितना सहज बना दिया। लेकिन उस सहजता के साथ में वही हमारा श्रृंगार भी है। इसलिए यहां से जाने के बाद ब्रह्मचर्य की तो बात नहीं, वो तो सब उसमें पास है, लेकिन बाबा कहते हैं ना, शांति स्तंभ पे लिखा है, पवित्रता की एक डेफिनेशन लिखी है, पढ़िए आप लोगों ने, रोज चक्कर लगाया ना, तो पवित्र स्तंभ के ऊपर सामने एक डेफिनेशन लिखी है, क्या है? किसी को मन वचन कर्म से दुख देना भी अपवित्रता है। तो यहां से जाने के बाद हमें इतना परिवर्तन हो जाए कि सामने वाला एकदम से प्रभावित हो जाए कि कोई प्योर सोल आ गई। दूसरा, इस संगम युग में हमारी ये भी प्राप्ति है ना, हमारे लिए जो खजाना मिला और किसी के पास है नहीं, और प्राप्ति है जो हमारा सात्विक भोजन, जो बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन होता है, हम सहज रूप से भोजन को स्वीकार करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, जो दुनियावी लोग है कैसा भोजन स्वीकार करते हैं। जो उनके थाली में चीज है ना, हर चीज को डॉक्टर मना करता है, ऐसा चीज वो लोग ग्रहण कर रहे हैं। और बाबा का याद में बनाया हुआ सात्विक ब्रह्मा भोजन शरीर को भी शक्ति देता है, आत्मा को भी शक्ति देता है। तो ये भी हमारा एक खजाना है संगम युग का, जो हमें सहज भाव से मिल जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास डायरी पेन तो होगा ना, बट्टी में आया डायरी पेन होगा, तो डायरी में आप लोग नोट कीजिएगा कि जब से बाबा के बने तब से मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई। यहां से भरपूर होके, भरपूर तो हो गए, लेकिन वो भरपूरता बट्टी का लक्ष्य क्या था, अंतिम पुरुषार्थ ना, अंतिम पुरुषार्थ बेहद का वैराग। तो यहां से जाने के बाद वो जो पुरुषार्थ हमने तीन दिन किया, अपने पूरे दिन भर, पूरे जीवन भर हमारे साथ में रहे, सबसे पहले तो उसके लिए कि मुझे प्राप्तियां क्या क्या हुई। हम अपनी जीवन को हमारी प्राप्तियां देख के कहे कि वाह ब्राह्मण लाइफ, वाह वाह बाबा वाह, कितना भरपूर कर रहे। सबसे पहली चीज तो तन, ये तन जो दिया है, देखो हम कितने भाग्यशाली है जो इस संगम युग में उस परमात्मा ने इस शरीर को एक्सेप्ट किया है। ये शरीर जो मिला है ना सेवा के लिए, उस परमात्मा ने इस शरीर को भी चुना है। तो ये भी हमारे लिए कितना भाग्य से भाग्य की बात है कि मेरा जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है, वो भी सेवा में भगवान ने चुन लिया है। और आप सहज रूप से भाव पाएंगे कि जब हम सेवा के रूप में शरीर को यूज करना शुरू करते हैं ना, तो ये जो छोटी मोटी तकलीफें होती है, छोटी मोटी व्याधियां होती है, वो हमारे पुरुषार्थ को और हमारी स्थिति को असर नहीं डालती है, उससे नहरे हो जाते हैं। तो आप ये भी नोट कीजिएगा आराम से कि जब से बाबा का बना हूं तब से मेरे इस शरीर में क्या क्या फायदा हुआ। मेरी हेल्थ अच्छी रहने लगी, मेरे शरीर का होता है ना आजकल थोड़ा सा ग्लो हो जाता है, सहज रूप से भाव होते कि आजकल आपका चेहरा चमकने लगता है, और होता है। अब चारों के बीच में, दस लोगों के बीच में बैठो, पता चल जाएगा कि योगी आत्मा है। तो जो जो भी ऐसी प्राप्तियां हुई है वो आप नोट कीजिए, आपको बाद में जब पढ़ेंगे ना तो बड़ा गर्व महसूस होगा अपने आप पर। ये हमारा मन है, तन तो शरीर सेवा में लगा दिया, तन में फूल प्राप्तियां हो गई, स्थूल प्राप्तियां भी और सेवा के रूप में भी। ये मन देखो, आज मन में लोगों का सबसे ज्यादा अगर समय डॉक्टर्स लोगों का जाता है ना, तो मन के ऊपर ही काम करने में जाता है। व्याधि कुछ भी हो, बीमारी कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर्स क्या पूछते हैं, अच्छा आपको नींद आती है, आप जरा सोचते तो नहीं हो, सोचते हो तो क्या सोचते हो, है ना, लगभग यही पूछते हैं। इवन एक्सीडेंट हो जाता है तो भी पूछते हैं, अच्छा एक्सीडेंट हो गया क्या सोच रहा था, है ना। तो सबसे ज्यादा तकलीफें, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मन के ऊपर होते हैं। और उस मन को बाबा ने कैसे बना दिया, सुमन बना दिया, केवल उससे भी बड़ी बात, बाबा ने केवल सुमन नहीं बनाया, शक्तिशाली तो बनाया लेकिन पारस जैसा मन बना दिया हमारा। कितना भी निगेटिव विचार उसमें सामने घटना दिखाई दे, लेकिन हमारे में इतनी शक्ति है जो हम उस निगेटिव को पॉजिटिव चेंज कर सकते, कर सकते हैं ना, किसके आधार से कर सकते हैं। मन के लिए बाबा ने कौन से टॉनिक दिए जो किसी भी निगेटिव थॉट को पॉजिटिव में परिवर्तन करे, समान है ना, समान की लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, कि हर थॉट के लिए एक समान है, चाहे व्यर्थ थॉट के भी काउंटर करने के लिए समान है, नेगेटिव थॉट को काउंटर करने के लिए एक समान है। तो जब हम समान की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा मन पारस जैसा बन जाएगा। और जैसे संतों का मन होता है ना, चाहे कितना भी कोई ग्लानि करे और उसके मन से हमेशा क्या निकलता है, दूसरों के लिए दुआएं निकलती है, शुभ भावनाएं निकलती है, तब उसके लोग पूजा करने लगते हैं, तब उनको मानने लगते हैं। तो जब हमारा मन भी ऐसे हो जाएगा ना, तब भी हम देवतुल्य बन जाएंगे। तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि इतनी सारी करोड़ों आत्माएं हैं, इतने स्ट्रांग माइंड वाले, विल पावर वाले लोग दुनिया में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी केवल हमारा मन भगवान को लगा कि इनका मन है जो पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमको चुना है ना। तो कितनी बड़ी हमारे लिए फक्र की बात है कि भगवान को हमारा मन ऐसे महसूस हुआ कि ये मन विश्व परिवर्तन के कार्य में लग सकता है। अच्छा, धन, धन की कमी है किसी को? कौन कहता है यार कि मैं तो बहुत गरीब हूं? बाबा का बच्चा पद्मा पद्मपति है। स्थूल धन तो अपनी जगह पे है, लेकिन स्थूल धन की भी कमी कभी भी नीचे बुद्धि बाबा के बच्चे को कभी नहीं पड़ सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो हमारा जो वेस्टेज है ना, जो ड्रेनेज जो है, वो पूरा बंद हो गया। दुनिया में कितना पैसा कमाते हैं लेकिन उससे ज्यादा वेस्ट हो जाता है। सैलरी होती है, सैलरी के बाद में तुरंत 8-10 दिन में ऐसे लगता है कि कुछ बचा ही नहीं, कैसे चलेगा। और हम बाबा के बच्चों का जितना आता है लगभग लगभग बैलेंस हो जाता है। बाबा की सेवा में लगाने के लिए भी हमारे पास धन होता है, दूसरों को हेल्प करने के लिए भी धन होता है, अपने आप को चलाने के लिए भी धन होता है। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारा धन पवित्र होता है। हम बाबा की याद में अगर हम जो भी स्थूल कार्य करते हैं, जो भी अर्निंग करते हैं, कोई भी नकारात्मक चीजों का प्रवेश किए बिना अगर अर्निंग करते हैं, तो वो धन हमेशा स्थायी होता है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि आप 1 रुपया लगाओ तो उसका 1000 गुना आपको मिलेगा। भविष्य में तो मिलेगा, लेकिन संगम युग में भी बाबा भरपूर कर देता है, भरपूर कर देता है। आप लोगों के सबके पास ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ सेवा का संकल्प आया, कुछ शुभ संकल्प आया, अपने परिवार के लिए शुभ संकल्प आया, तो अचानक से कोई न कोई कहां से कुछ मदद मिल गई, लेकिन कार्य संपन्न हो गया। हमारे जो बहनें होती है ना, सेंटर की बहनों के पास तो बहुत अनुभव ऐसे है। बड़े बड़े बाबा के घर बनते हैं, लेकिन उस सबसे पहले तो सोचते हैं कि कैसे बनेगा, कितना सा तो है, लेकिन बहनों की हिम्मत होती है और बाबा की मदद होती है। बाबा को कराना होता है, इसलिए बड़े से बड़ा कार्य जो बड़े बड़े MBA के हुए लोग भी नहीं सोच सकते, हमारी बहनें सहज तरीके से कार्य संपन्न कर देती है। तो संगम युग में भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है, हमारे लिए खजाना है कि हमें धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। अगर हम बाबा की याद में ही कमाएंगे भी, बाबा की याद में ही खर्चे भी करेंगे और बाबा की सेवा में लगाएंगे, तो कभी कमी नहीं होगी। अच्छा, संकल्प, लोगों के कितने संकल्प वेस्ट होते हैं, व्यर्थ होते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प कितने पावरफुल होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं, विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। और ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प भगवान को नीचे बुलाते हैं, और हमारे संकल्प से तो बाबा आ जाते हैं ना, और दूसरों को बदल सकते हैं। देखो, गायन है, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना संकल्प से की, तो एक संकल्प से संपूर्ण सृष्टि की रचना बाबा ब्रह्मा ने कर लिया। तो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाबा ने किसके आधार से, किसके सहयोग से सृष्टि की निर्मिति की या परिवर्तन किया? हम ब्राह्मणों के संकल्पों से ही परिवर्तन होगा। हम ब्राह्मणों के संकल्पों से ही नई दुनिया आएगी। तो हमारे पास ये भी एक खजाना है। तो ये भी आप जो लिस्ट बनाएंगे ना, उसमें ये जरूर नोट करना कि जब से बाबा के बने तब से मेरे संकल्पों में क्या क्या परिवर्तन आया। मेरे पहले लिए हमने तन में, शरीर में क्या क्या फायदे हुए, मेरा मन कैसे, क्या क्या बेनिफिट हुए, क्या क्या फायदे हुए, मन कैसे स्थिर हुआ, मेरा धन कैसे बचने लगा, धन कैसे और बढ़ने लगा या बैलेंस होने लगा, फिर हमारे संकल्पों की बचत या संकल्पों में कैसे परिवर्तन हुए, पहले कैसे संकल्प चलते थे अभी कैसे संकल्प चल रहे हैं, और लास्ट में है समय। सबके पास, किसी के पास पूछो ना तो सबसे एक ही आंसर होता है, हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है। और ब्राह्मण बच्चों के पास समय ही समय है। किसी को पूछो आप 10 मिनट केवल ज्ञान सुनने के लिए आ जाओ तो बोलते नहीं, ये पूरा शेड्यूल गिना रहते हैं कि ऐसे ऐसे शेड्यूल है, बिल्कुल समय ही नहीं मिलता हमारे पास। और हम बाबा के बच्चे कितना घंटा दे देते हैं ज्ञान योग के लिए, देते हैं, देते कि नहीं देते? देखो सवेरे से अमृत वेले से हमारा दिन शुरू हो जाता है, अमृत वेला, मुरली, उसके बाद में अपना दिनचर्या शुरू करना। जब हमारा आधा दिन पूरा हो जाता है तो उस समय दूसरे का दिन शुरू होता है, तो इसलिए आधा दिन तो हमको एक्स्ट्रा मिल गया, और वो भी एक्स्ट्रा नहीं मिला, वो सफल हुआ, इन्वेस्ट हुआ वो समय। वो समय जो इन्वेस्ट हुआ ना, तो जो बचा हुआ दिन होता है उसमें वो समय का सदुपयोग हो जाता है, क्योंकि हमारे माइंड की क्लैरिटी आ जाती है, इसलिए हमारा थॉट्स में समय वेस्ट नहीं होता। हमारे काम करने के जो प्लानिंग करनी पड़ती है ना, उसमें समय वेस्ट नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा दादियों को, हमारी बड़ी दादियां जो भी थी, तो जो भी सोचने का काम करना होता है ना, प्लानिंग करने का काम, वो अमृत वेले के बाद ही करते थे, ताकि बाबा की डायरेक्ट टचिंग और क्लियर टचिंग होती है, तो उस समय हम अपना जितना प्लानिंग करेंगे उतना से संपन्न हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास खजाने संगम युग में मिले हैं ना, ये केवल सुनने के लिए नहीं रखी है, हर एक के अपने अलग अलग खजाने होंगे, लेकिन आप डायरी में इसको नोट कीजिए कि क्या 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 मुझे फायदे हुए, कौन से खजाने मैंने जमा किए हैं, और वो मुझे ऐसे कहां से अभी कैसे काम में आ रहे हैं। ठीक है, इतना होमवर्क करेंगे सभी होमवर्क इतना। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज, क्योंकि यहां से जाने के बाद है ना, हम 3 दिन के लिए केवल भट्टी में नहीं आए हैं, लेकिन ये भट्टी, जैसे कहा ना कि बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत वेट करने के बाद पांडव भवन के भट्टी का चांस मिलता है ना, तो आप सोचिए अभी नेक्स्ट भट्टी का चांस कब मिलेगा। तो बाबा है, बाबा के सामने रिक्वेस्ट डाल दीजिए, बाबा देता है, लेकिन आपके नासिक के भी ऐसे बहुत सारी आत्माएं होगी ना, वो अभी भी तड़प रही होंगी, ये इन लोगों को चांस मिला, हमको तो नहीं मिला अभी तक, तो अभी दूसरों को भी तो चांस देना पड़ेगा, इसलिए यहां से जाने 2000 में से 200 को चांस मिला है ना, तो अभी कितने बाकी है। तो बाबा के सामने हमारी दीदी निमित्त होते हैं, दीदी बाबा के सामने अर्जी डाल देते हैं, बाबा स्वीकार कर लेता है, लेकिन यहां से जाने के बाद हम यहां ऐसे अपने आप को भट्टी में वहां हमेशा के लिए रखे कि हर समय आपको यही अनुभूति हो, रोज सवेरे आंख खोलेंगे ना तो ऐसे लगना चाहिए कि मैं मधुबन में आंख खोल रही हूं, जब कार्य कर रहे हैं तो उस समय ऐसे लगना चाहिए कि बस मधुबन में मैं भट्टी कर रही हूं, स्थूल कार्य नहीं कर रही हूं लेकिन भट्टी कर रही हूं। रात को सोने जाएंगे तो यहां सब गुड नाइट करके जाते हैं ना, हॉल से उतरते हैं सभी, बाबा को गुड नाइट करते हैं, फिर अपने अपने कमरे में जाते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छी नींद आती है। तो वैसे ही अपने घर में जाएंगे तो वैसे ही मधुबन में गुड नाइट करके करने आने का, लेकिन वो कैसे करेंगे, ये लिस्ट तो हमने निकाल दी, लेकिन हम जुड़े कैसे रहेंगे। दूसरी एक चीज आप लोग जरूर कीजिए, एक अपनी डायरी का एक पेज ले लीजिए अपने, आज रात को करेंगे तो ज्यादा बेटर है, घर में जाने के बाद तो आप सारा भूल जाएंगे, आज रात को ही करना। देखो बाबा ने हर किसी को अपने जीवन में ऐसा एक अनुभव किया कराया होता है जो उस समय हमको लगता है कि बस ये तो केवल बाबा ही करा सकता है, हर एक के जीवन में होता है। किसी के लिए कुछ शारीरिक तकलीफ आती है उस समय बाबा की मदद मिलती है, किसी को अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं उस समय बाबा की मदद मिलती है, किसी को अपने संबंधों में बहुत तकलीफें होती है, बंधन होते हैं या आपस में कुछ टकराव होते हैं तो अचानक से बाबा की मदद मिलती है और एकदम से जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा जो कुछ भी इंसिडेंट आपके जीवन में हुआ है उसको आज रात को ही आप नोट कर लीजिए, भले डिटेल नहीं नोट कीजिए लेकिन वो एक वाकया कि कौन सी परिस्थिति आई थी और उस समय कैसी मुझे बाबा की मदद मिली और उसके बाद जब मदद मिलने के बाद मेरे में क्या विचारों में परिवर्तन या निश्चय की दृढ़ हो गया या बाबा के प्रति एक खींच महसूस हुई जी। तो ये अभी सेल्फ काउंसलर है आप सभी ना, तो सेल्फ के लिए पहले कीजिए, है ना। ये देखो एक छोटी छोटी बातें होती है लेकिन अपने जीवन में इतना फायदेमंद होती है क्योंकि हम अपने आप में हर एक ब्राह्मण बच्चा बहुत सारे हमने उपलब्धियां अपनी गिनी लेकिन उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हर एक ब्राह्मण बच्चा अपने आप में एक स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है। हमारा जो जीवन है ना एक स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है जिसको हम खुद भी पढ़ सकते हैं और दूसरे भी हमारे जीवन से पढ़ सकते हैं। तो हम जो हमको बाबा ने अनुभव कराया है वो लिखेंगे तो अपने खुद के लिए भी। हमारे दादियों ने क्या किया, दादियों की एक विशेषता थी कि रोज रात को दादी डायरी लिखते थे और डायरी लिखते थे बाबा के पास, डायरी जमा करके फिर आराम से सो जाते थे और उसी से इतना बड़ा यज्ञ का विस्तार भी हुआ, पालना भी हुई और पालना होने के साथ साथ सभी लोग दादियों के जैसे ही सक्षम बन पाए। केवल दादियां खुद नहीं सक्षम बनी लेकिन अपने से कितने हैंड्स तैयार किए, आज कितनी सारी हमारी बहनें अलग अलग जगह पे कितने सेंटर्स संभाल रही है। तो दादियों ने अपनी जो दिनचर्या है, अपना जीवन है या अपना जो आदतें है उसी से सभी बहनें भी सीखी, हम मधुबन निवासी भी उसी से सीखते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी हर एक की लाइफ भी ऐसी एक लाइब्रेरी है। तो आप ये चीज जरूर लिखिए, पहला वो लिस्ट बना लीजिए क्या क्या प्राप्तियां हुई, दूसरा एक आपके जीवन का एक इंसिडेंट जो आपको लगता है कि ये केवल और केवल बाबा करा सकता है, हर एक के जीवन में होगा, वो एक नोट कर लीजिए। अब तीसरी चीज, तीसरी स्टेप जो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, परिश्ता बनना, संपूर्ण बनना, वो कैसे साध्य होगा। सब चाहते तो है ना परिश्ता बनना लेकिन प्राय ऐसे देखते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं ना, जब परिश्ता स्वरूप की अनुभूति करते हैं तब तो बड़ा मजा आता है, लाइट अनुभव होता है, उड़ने भी लगते हैं। वो जो अनुभव होता है वो घंटा दो घंटा ढाई घंटा तक अच्छा भी रहता है लेकिन फिर चलते चलते कारोबार में व्यस्त होते होते फिर भारी हो जाते हैं। होता है ऐसे, होता है। कौन कहता है कि 24 घंटा फरिश्ता स्वरूप का अनुभव रहता है, लेकिन बाबा ने तो कहा है कि हर पल हर घड़ी एकदम लाइट रहो, फरिश्ता स्वरूप रहो। तो जो भगवान कहता है तो भगवान वही चीज कहता है जो हो सकती है, परसेंटेज में बने। तो वो परसेंटेज हम कैसे बढ़ाए, वो परसेंटेज हम कैसे बढ़ाए, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ज्ञान योग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सूक्ष्म वतन को नीचे लाएंगे। वही तो लाते हैं हम लोग सूक्ष्म वतन को नीचे, परिश्ता भी बन जाते हैं, उठने भी लग जाते हैं, हम सूक्ष्म वतन तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा रहता है। तो क्या करे जो दिन भर रहे? देखो बाबा ने जो भी ड्रिल्स हमको बताई है ना, चाहे चार धाम की ड्रिल है, पांच स्वरूप की ड्रिल है, या दूसरी जो भी ड्रिल्स बाबा ने बताई है, तो बाबा ने एक उसमें अंडरलाइन किया है कि आप बार बार इस ड्रिल को करो। लेकिन बार बार करने के लिए हमारे पास इतना समय तो होता नहीं है। अभी ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस में बैठे बैठे हम चलो सब कुछ छोड़ के पांच मिनट दस मिनट के लिए बैठ के ड्रिल करें, पॉसिबल है? ऐसे नहीं होता है ना। लेकिन पॉसिबल ये है कि हम हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपने लिए एक माइंडसेट तैयार कर लेवे कि ड्रिल का एक्सपीरियंस कर सके। जैसे आप परिवार के साथ हो, रात के भोजन पे बैठे हो, सब पूरा परिवार बैठा है, उसी समय एक मिनट के लिए पांच स्वरूप की ड्रिल कर लो मन मन के अंदर अंदर। पांच स्वरूप की ड्रिल में क्या होगा? पहला ही कौन सा अभ्यास है? आत्मिक स्वरूप का ना, मैं आत्मा, सामने वाला आत्मा, सारे आत्माएं बैठे हैं। दूसरा है ब्राह्मण स्वरूप, अभी हम संगम युग में हैं, तो ब्राह्मण स्वरूप है, भले वो लौकिक वाले हैं या उनको बाबा का ज्ञान नहीं, लेकिन मैं तो ब्राह्मण हूं ना। हम अपने आप को तुरंत साकार बाबा के साथ लेके आई कि साकार बाबा मेरे साथ है, साकार बाबा के मस्तक में भी शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु, मैं ज्योतिर्बिंदु, साकार बाबा का हाथ मेरे हाथ में और सारे परिवार से हम मिल रहे हैं। हो गया। इसके बाद में रिश्ता स्वरूप चले जाइए, बाबा के साथ में उड़ के अपने परिवार को, अपने सारे घर को सकाश देना शुरू कर दीजिए। वहां गए, फिर उसके बाद में आदि स्वरूप में आ जाइए। आदि स्वरूप में क्या होगा? देवता स्वरूप। देवता स्वरूप मतलब, देवता स्वरूप मतलब आप ऐसे नहीं कि उनके सामने ऐसे खड़े हो जाओ, है ना? देवता स्वरूप माना नो एक्सपेक्टेशन, बस सबको सुख देने की भावना, सबको सुख देने के निमित्त मैं हूं, बाबा के साथ हूं, ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, बाबा के साकार बाबा के साथ हूं, और नई दुनिया में नए स्वरूप में मतलब श्री कृष्ण के साथ में हम सबको सुख दे रहे, सभी सुख में हैं। और फिर पूज्य स्वरूप कि सामने वाले जो भी है उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है ना। एक मिनट में हो गया, एक मिनट में उसमें हो गया। दूसरी सिचुएशन आई, अब ट्रैफिक में फंसे हो, ट्रैफिक में फंसे हुए उस समय भी फटाफट एक मिनट में अनुभव कर लो, सामने जितनी भी आत्माएं दिख रही है उनको सकाश देना शुरू कर दो, चारों पांचों स्वरूप का उस समय अनुभव करा लो, खुद कर लो, उनको करा लो, ऑफिस में बैठे हैं, लंच समय हुआ उस समय अनुभव करा लो, नहीं बहुत कम समय है तो भी फरिश्ता स्वरूप तो कर ही सकते है ना, फरिश्ता स्वरूप तो कर ही सकते। फरिश्ता अर्थात कोई रिश्ता नहीं, तो जो भी सिचुएशन है उसमें से खुद को डिटैच करना तो इजी है ना, एक मिनट के लिए डिटैच हो जाओ। तो ऐसा अगर हम दिन में अपने रूटीन कार्य से, रूटीन हमारे जो दिनचर्या है उनसे अगर हम योग को जोड़ लेंगे तो हम निरंतर योग में रह सकते हैं। निरंतर इस स्थिति का जो आज आपने तीन दिन में अनुभव किया होगा, उस स्थिति का अनुभव हम निरंतर कर पाएंगे जब हम अपने रोज के दिन के एक एक कार्य को योग के साथ जोड़ेंगे। बाहर दुनिया में आजकल जिम का बड़ा ट्रेंड चलता है, फिटनेस के लिए बहुत मेहनत करते हैं लोग, फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे शरीर को ठीक करने के लिए, लेकिन वो शरीर को ठीक कर पाते लेकिन मन को, उनके पास साधन ही नहीं है। हमारे लिए बाबा ने सबसे बड़ा साधन दिया है, शक्तिशाली साधन, ड्रिल्स का, कि आप जब चाहे जहां चाहे, इतना युक्तियां बाबा ने बता दी। हम माइंड की ड्रिल करना शुरू करेंगे ना, माइंड की एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो स्वतः ही जो नकारात्मक विचार है वो फिल्टर हो जाएंगे। सिचुएशन कैसी भी हो लेकिन नकारात्मक विचार स्वतः ही फिल्टर हो जाएंगे और उसकी जगह शक्तिशाली संकल्प उत्पन्न हो जाएंगे। फिर सामने वाले को अनुभव होगा कि ये आत्माएं आधारमूर्त आत्माएं है ना। आधारमूर्त तो है, अनुभव करना कभी कल्प वृक्ष के जड़ में हम बाबा के साथ बैठे हैं, सारा कल्प वृक्ष हमारे ऊपर है, तब तो अनुभव होगा कि कितनी जिम्मेवारी है मुझ आत्मा के पास है और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैं सक्षम हूं, इसलिए बाबा ने चुना है ना। हम केवल एक के लिए, खुद के लिए तो नहीं आए बाबा के पास, बाबा ने विश्व सेवा के लिए हमें चुना है। तो ये भी एक उपलब्धि है हमारी। आज कंपनी में कई होते हैं, कंपनी में जितनी ज्यादा जिम्मेवारियां मिलती है उतना उसका रुतबा बढ़ता है ना। तो हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमको चुना है, तो मैं कितनी आत्माओं का कल्याण कर पाऊं उतना ही बाबा के पास मेरा रुतबा बढ़ेगा और वही मेरी जिम्मेवारी भी है, इससे हम भाग नहीं सकते। तो उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए हम सबसे पहले खुद को शक्तिशाली और निरंतर बाबा के साथ अटैच करना बहुत आवश्यक है। तो ये तीन चीजें है ना, जो अपने संपत्ति या अपनी जो जो अचीवमेंट्स है, वो अचीवमेंट्स की लिस्ट बाबा के बनने के बाद की वो निकालना। दूसरा, बाबा ने जो हमको रियल मदद की है, जिसकी अनुभूति मुझे हुई है। एक होता है देखो थ्योरेटिकल, हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि बाबा मदद करता है, बाबा ऐसे है, बाबा वैसे साथ में है, लेकिन जो मुझे अनुभव हुआ है ना वो इंसिडेंट वो नोट करना। और तीसरा ये ड्रिल, तो ड्रिल के लिए आप नोट अपने डायरी में ये करना कि मैं कहाँ कहाँ ड्रिल करा सकती हूं। एक घर परिवार के साथ रहते उस समय कर सकते है, ट्रैफिक में कहीं चल रहे है उस समय समय मिलता है उस समय कर सकते हैं, ऑफिस में या कार्यस्थल पर, चाहे सेंटर पे रहते हैं चाहे कार्यस्थल पे जाते हैं, चाहे अपने घरों का माताओं का कार्य होता है ना, सब लोग निकल जाते हैं लेकिन माताएं घर में अपना कार्य करते हैं, वो भी उनका कार्यस्थल है, तो उस समय हम कर सकते हैं। फिर हम जब एंजॉय करने जाते हैं किसी फ्रेंड्स के साथ तो उस समय भी ये चीज कर सकते हैं। ऐसे हर एक के लिए अपने अपने पोर्शन आप खुद सिलेक्ट कर सकते, जरूरी नहीं है कि इनके लिए जो लागू है वही सबके लिए लागू होगा। तो ऐसा अगर करेंगे तो हम निरंतर इस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और देखो इतना मजा आएगा ना, फिर आप जैसे लगेगा कि बस आप यहां है सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उससे भी परे। और जब आप ये अनुभव करना शुरू करेंगे ना तो फिर ऐसे नहीं होगा, कई बार ऐसे होता है ना हम लोग सामने से बोलते हैं अरे यार वो तो योग में है उसको नहीं सुनाई देगा, कई बार होते हैं ना खो जाते हैं उसको हम कहते हैं कि योग में है, लेकिन जो योग में बाबा से कनेक्ट है ना वो भूलेगा नहीं, एब्सेंस माइंड नहीं रहेगा लेकिन उल्टा उसकी क्रिएटिविटी और उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी अपने कार्य करने की भी। कार्य कैसे पूरा होगा उनको भी कुछ नहीं पता चलता है, आप सबको अनुभव ये चीज है लेकिन उस अनुभव को थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है। और आप तो लकी हो जो आपको एक सबसे बड़ा बूस्टर चार्जर मिल गया है ना मधुबन का, मधुबन में आए हैं, चाहे सेवा में भी कोई आए होंगे तो उनको भी चांस मिलता है मधुबन का। तो जैसे बैटरी एक कई बार ना पूरी ड्रेन हो जाती है, वो कितना भी चार्जिंग पे लगाओ चार्जर लगाओ ना वो चार्ज ही नहीं होती, उस समय उसको बूस्ट चार्ज करना पड़ता है, बड़ा चार्जर लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद एक बार बूस्ट चार्ज हो जाती फिर चलनी पड़ जाती। तो ये मधुबन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और वो भी इतने अच्छे समय पर, वातावरण भी कितना सुहावना है, चारों तरफ मस्त फॉग है, वातावरण ठंडा ठंडा है, हल्की हल्की बारिश होती, बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं आई है ना, हल्की हल्की आई, बूंदाबांदी आई, गुलाबाशी हुई है ना। तो इतना अच्छा अनुभव, सच में आप यहां से जाएंगे ना तो इस चीज को भी केवल याद करेंगे ना तो एक एनर्जेटिक फील होगा जी, जाने का मन नहीं हो रहा है ना। तो मधुबन है ही, कहा ना मैंने शिलू दीदी को कहा था कि हर की पौड़ी है, लोग आके डुबकी मार के निकल जाएंगे, लेकिन हमारा बाबा ने जो रोल दिया है ना, हर किसी को रोल दिया है कि यहां से भरपूर हो जाओ, भरपूर होके बस दूसरों को भरपूर करो। हम आत्माओं के पास जाएंगे और उसमें से अगर एक आत्मा का भी जीवन का कल्याण अगर कर पाए ना, तो उसका जो आनंद मिलता है, उसका जो सुख मिलता है ना, उस सुख की कोई कंपेयर नहीं है। इसलिए और वो आजकल सेवा का ऐसे स्वरूप बदल गया है ना, वाचा से इतने प्रभावित नहीं होते लोग, कितना भी अच्छा आप भाषण कीजिए, लेकिन भाषण करने वाले तो बहुत है, लेकिन भाषण करने वाले की स्थिति कैसे है? कई बार तो सामने वाले को बोलना भी नहीं आता है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी होती है ना, उसको देख के ही स्वतः ही सेवा हो जाती है। लोग ढूंढ के आते हैं कि उस दिन मेरे साथ में, मेरे कंपार्टमेंट में ऐसा एक कोई व्यक्ति बैठा था, तो वो कहां जाता है, वो इतना शांति से कैसे बैठा था। हमारे मधुबन में भी ऐसे आते, कई बार गेट पे आते, मेन गेट पे पूछते पूछते कि ऐसे ऐसे कोई आया था, उनको नाम नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन यहां पूछ के आते ऐसा एक बंदा बैठा था और हम इतना कुछ कर रहे थे लेकिन वो अपने में खोया हुआ था, उसको असर ही नहीं हो रहा था। फिर किसी को पूछा तो बोला ओम शांति में जाता है, तो ओम शांति ढूंढते ढूंढते वो माउंट आबू पहुंच जाते हैं। तो इतनी स्थिति हमारी सेवा करती है, प्रभाव डालती है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको कितनी आंखें वॉच कर रही है, क्योंकि हम लोग तो स्टेज पे है ना, हीरो पार्ट धारी है, बाबा के हीरो पार्ट धारी बच्चे सर्वश्रेष्ठ समय पर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठे हैं और सर्वश्रेष्ठ रोल भी हमको ही मिला है ना, हीरो का रोल। तो हीरो का रोल जो होता है ना, सबके फोकस कैमरा होता, पूरा ग्रुप होगा, लेकिन ग्रुप में फोकस क्या करेंगे, हीरो को करेंगे, बाकी सबको ब्लर कर देंगे। तो हमारी जो भी एक्टिविटी है ना, वो क्लियर सामने दिखाई देगी, और उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, क्योंकि हमारी एक एक एक्शन, एक एक हमारे बोल, एक एक हमारी इमोशंस सब नोट हो रही है, कॉपी भी हो रही है, केवल नोट नहीं हो रही है, कॉपी भी हो रही है। एक जगह हम गए थे स्कूल में किसी प्रोग्राम करने के लिए, तो बच्चों के साथ प्रोग्राम मतलब सुना रहे थे, कुछ ना कुछ सुनाया, तो उसमें से एक बच्चा खड़े होके बोलता है कि सर लास्ट टाइम हमारे पास एक दीदी आई थी, तो दीदी ने हमको बताया था कि टीवी देखना रावण का काम है, है ना, छोटे बच्चों को जैसे सिखाते हैं ना, टीवी देखना रावण का काम है। तो बोला मैं घर में गया और मेरे पापा टीवी देख रहे थे तो उसने पापा को बोल दिया ये तो रावण का काम है, अब तो रावण हो। तो उसके पापा को एकदम से लगा कि तुमको किसने सिखाया, किसने सिखाया। फिर वो तो थोड़ा सा जोश में वहां सेंटर पे आ गया था वहां इस पे, फिर वहां देखा, तो वहां देखा तो बहनों की जो व्यवहार है, बहनों ने बुलाया उनको अच्छे से, टोली विली खिलाई, बिठाया और फिर बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में बातें की, तो इतना प्रभावित हुआ। फिर उसका वो जो परिवार का ट्रांसफर, माउंट आबू की बात है ये, वो परिवार का ट्रांसफर वहां हिमाचल में हुआ था, क्योंकि वो सेंट्रल स्कूल का बच्चा था ना आर्मी वाला, तो वहां से वो फोन करते हैं उसकी जो मम्मी और वो, कि वहां से आने के बाद उस एक इंसिडेंट से हमारे घर में टीवी लगना बंद हो गया। तो कितना मतलब एक बच्चों के ऊपर इफेक्ट डालता है ना। तो ये चीजें होती है कि हम जो सेवाएं करते हैं, जो बोल बोलते हैं, वो कितने अथॉरिटी से बोलते हैं। वही चीज कभी नेगेटिव क्रिटिसाइज के रूप में बोलेंगे तो उस पर बवाल हो जाएगा, है ना, यही चीज अगर क्रिटिसाइज के रूप में बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा, लेकिन अच्छे भाव से बोलते हैं तो उसमें सेवा हो जाती है। तो ऐसे ही हम भरपूर होके जाए, है ना, मधुबन सागर है, सागर से भरपूर होके अपनी गगरी भर के, आजकल कावड़ यात्रा चलती है ना सब जगह, लोग कितना दूर दूर से कावड़ में पानी लेके गंगा जल लेके निकलते हैं और कितना मेहनत करते हैं, पाँव में कुछ नहीं पहनेंगे, कितना किलोमीटर पैदल चलेंगे, उसके बाद में अपने जो परिजन होते हैं, अपने जो नजदीक वाले होते हैं, वहां उस जल को डालेंगे ताकि वहां का भी जल पवित्र हो जाए। तो आप भी यहाँ बाबा के घर में आए हो भरपूर होके, तो यहां से भरपूर होके जाइए और बस अभी नासिक में ऐसे भी सेवाएं तो बहुत है, हमारी दीदियां तो निरंतर सेवा में लगी रहती है, लेकिन दिनों दिन इतना विस्तार भी हो रहा है। अभी शिव दर्शन सरोवर भी बन रहा है ना दीदी, तो वही नाम है ना शिव दर्शन सरोवर है? तो सागर से पानी लेके जाके सरोवर को भरपूर करना है ना? तो वहां ऐसी इतनी सेवाएं शुरू करो कि जो भी वैष्णव बाबा के मकानों को एक गिफ्ट होती है, कितना भी मकान बनाओ दूसरे दिन से वो छोटा पड़ने लगता है। हाँ तो हम तो है ही ना परिवार के ही है, तो जब भी कुछ सेवा हो तो दीदी आदेश करे तो हम तो ही। बाकी अभी हर कोई एम्बेसडर है, सेवा का एम्बेसडर हर कोई है, तन मन धन समय संकल्प जो पॉसिबल हो हर चीज जब हम सहयोग करते हैं ना तो भविष्य के लिए हमारा सहयोग जमा हो जाता है। मुझे याद आता है हम दीदी के साथ में ब्रिजमन भाई जी के साथ मिल रहे थे इसी शिव दर्शन सरोवर के इसमें कनेक्शन में ही मिल रहे थे, दीदी मैप वगैरह लेके आए थे, तो भाई साहब के पास बैठे, भाई साहब ने पूरे गौर से सुना, हर चीज ध्यान से सुना और एकदम सीरियस हो गए ऐसे। तो हमको थोड़ा सा अंदर से आया कि पता नहीं भाई साहब सीरियस हो गए क्या जवाब देंगे, तो भाई साहब ने पूरा वापिस नक्शे को देखा और कहा कि मुझे लगता है ये जो स्थान है ना, इस स्थान अंतिम समय के लिए बन रहा है, और उसमें भी भाई साहब ने बोला अंतिम समय में करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों को अटेंड करने के लिए या केवल क्या बोला था अंजलि देने के लिए इस शिव का स्थान बन रहा है, ऐसे भाई साहब ने उस समय एक लाइन कहा था। तो दीदी को शायद याद होगा, दीदी और हम लोग सब गए थे, फिर भाई निर्वेर भाई जी से वगैरह सबसे मिले, तो ऐसे बोर्डों का भी बहुत ब्लेसिंग उसमें है, और बाबा को तो सेवा करानी ही होती है और हम तो सब निमित्त है ही, तो आपको उसकी भी बहुत बहुत बधाई है। और मधुबन में आए, मधुबन में आपका अपना घर है, इसलिए हम थैंक्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपका ही घर है, आप तो आते रहिए, हमेशा आते रहिए, और अगली बार आएंगे तो अपने साथ और चार लोगों को लेके आइए ना मधुबन की अनुभूति कराने के लिए, ठीक है? ओम शांति, थैंक यू।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चार दिन के बाद आज आप सभी के सामने हैं। भले क्लास में तो बैठते ही थे, परंतु सन्मुख आज होते हैं। और विशेष आज ये भट्टी की पूर्णावति कहो या संपन्नता कहो, जो जीतू भाई के द्वारा हो रही है। और उसमें भी जीतू भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, हम सभी को कहा कि शिव दर्शन सरोवर में करोड़ों आत्माएं आकर के उसका लाभ लेगी। आज हम देखते हैं कि 200-300 भाई बहने जब मिलते हैं तभी भी कितनी खुशी होती है, या आपस में मिलकर के ये भट्टी कहो, क्लास कहो, या विशेष एक बातें अपने जीवन की है उसके ऊपर ही हम सभी ने चर्चा किया, कुछ अपने अंदर भर लिया। और हाँ, हमें अपने आप का परिवर्तन किस प्रकार से करना है वो भी रियलाइज होता है। तो आज ये लास्ट समय है, आज का दिन, तो जीतू भाई को बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। इतनी शुभकामनाओं के साथ उन्होंने आज ये भट्टी की संपन्नता किया। और विशेष दिन आज उनके लिए, सो अपने लिए भी, आज इनका जन्मदिन है। भाई तालियां तो बजाओ। आज विशेष रीति से जैसे उन्होंने शुभकामनाएं शिव सरोवर के लिए, शिव दर्शन सरोवर के लिए दिया, वैसे ही हम सभी भाई बहनों की शुभकामनाएं जीतू भाई को आज के दिन के। कहते हैं भाई कितना जियो है। पूनम दीदी का हमेशा ये महावाक्य रहता है, यह तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। तो हम सभी ये तो जानते ही है कि आत्मा तो है ही अविनाशी और चक्कर में चलती ही रहती है, तो इसीलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भाई ही चलो सालों साल हम आत्मा का पाठ चलता रहे। और इसी प्रकार से विशेष पाठ ऐसी सिद्ध आत्माओं का कहो या विशेष आत्माओं का कहो, ये पाठ विशेष है जो छोटेपन से लेकर के ही यहाँ इस तपोभूमि में आ गए हैं। कितनी आयु में आए थे?
19 साल का था।
19 साल के, या वैसे देखो तो आप सभी जानते होंगे आज 19 साल का बच्चा घर में होता है तो माँ बाप को कितना ख्याल रहता है उसके लिए, पर पुष्पा माता ने ख्याल नहीं रखा ना? बाबा के पास भेज दिया उनको तो बाबा ने कितना ख्याल किया। और आज इतना संपन्न बन करके वो अनेक आत्माओं के लिए भी इतनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कितना भाग्यवान। वह आत्मा तो है ही है, परंतु उसके साथ साथ माता पिता के लिए भी हम यही कहेंगे कि नाम बाला करने वाले ये आत्मा है जो अनेक अनेक, तो क्या पण, सारे विश्व के आगे एक एग्जाम्पल बन करके सभी को प्रेरणा देने वाली। तो आज हम सभी के तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं आपके इस लौकिक बर्थडे के लिए। परंतु ब्राह्मणों के लिए लौकिक सो अलौकिक ही हो जाता है, इसीलिए आज लौकिक अलौकिक बर्थडे दोनों भी हम सभी आज रक्षाबंधन भी करेंगे। इनका वीणा बहन तैयारी करके लाइए। तो सबकी शुभकामनाएं उनके प्रति रहेगी रहेगी। सभी की तरफ से फिर से जीतू भाई का और सभी जिन्होंने भी क्लास कराया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी भट्टी बार बार होती रहे और भट्टी में सभी को लाभ मिलता रहे, यही शुभकामनाएं हम लेकर के जा रहे। सभी को लेकर आना है, कोई भी वंचित ना रहे, ऐसा हमारा संकल्प है। तो अगला ग्रुप जल्दी हम तैयार करके लाएंगे मधुबन में, क्योंकि पांडव भवन की भट्टी एक विशेष भट्टी है। तो ऐसी भट्टी बार बार होती रहे और हमारा नंबर लगता रहे, यही हम दृढ़ संकल्प करके जाते हैं।
ओम शांति। पहले तो जीतू भाई जी को आज के जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। और मैं दो लाइन बाबा की तरफ से इस बच्चे के लिए गीत गाते, मैंने बाबा गा रहे हैं, सिर्फ दो लाइन, ज्यादा नहीं, दो लाइन से नहीं। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी ने परिचय दिया, लेकिन जन्म देने का काम किया, लेकिन बाबा बोलते ना जैसे कि बाबा रत्नागर है, तो बाबा ने अमूल्य रत्न दिए, लेकिन रत्नों को तराशा दीदी ने, बहनों ने, है ना। हर डायमंड या रत्न में थोड़ा कुछ न कुछ फ्लॉ होता है, बाबा बोलते ना फ्लॉलेस डायमंड बनना है। तो बुरहानपुर कहो या नासिक कहो, तो बहुत पालना मिली बच्चों को, और जो जो भी कोई थोड़ी कमी कमजोरी होगी तो दीदी ने बहनों ने वो जो भी है निकाल ली। और खास ये इसलिए मैं आई हूँ यहाँ, दुआ एक हो ये कहो तो देती है, लेकिन राजेश भाई को कल परसों एक थॉट्स आया। जैसे मैं जब से मधुबन आती थी है ना, 79 में मैं पहली बारी मिली इसी हॉल में, है ना। जैसे किसी अभी देहधारियों का जैसे मिलना वगैरह होता है तो स्थान एकदम बुद्धि में फिट हो जाता ना, तो यहाँ ही बाबा मिलन के लिए हम 4-5 साल, जैसे कि 79 से लेके 83 तक इसी हॉल में बाबा मिलन हुआ। तो सारे नीचे बैठते थे, जैसे भाई लोग बैठे हैं ये बैठे ना, वैसे सारे दादियां वगैरह सब नीचे बैठते थे। यहाँ ये स्टेज तो बाद में बना, यहाँ संदल रहती थी, संदल पर दादी गुलजार जी आते थे, फिर बाबा का अवतरण होता था, और एक छोटा टेबल केवल सामने होता था, और बड़ी दीदी और मोहिनी बहन दादी कॉटेज में जो रहते वो बाबा के पास रात रात भर बैठे रहते थे, है ना ऐसे। और बस वो भी दिन बहुत प्यारे थे, ये भी दिन बहुत प्यारे है। और जब से मैं आई ना यहाँ मधुबन में, तो जो मधुबन निवासी उस समय तो सीनियर, अभी सीनियर हो गए वो सारे, तो उस समय मैं उनमें बड़ों में ये छोटों का रूप देखती थी कि ये बड़े हो जाएंगे फिर ऐसे मधुबन निवासी बन जाएंगे, है ना। तो यही ख्याल राजेश भाई को आया कि यहाँ से जाके दीदी से बहनों से पूछ करके जो भी ग्रुप वाइज मैं सुनाऊंगा, जैसे अभी भी स्पीच वगैरह करता है ना, तो जैसे 15 साल के ऊपर बच्ची या बच्चा जिसका भी हो माँ बाप का, तो उन्होंने अपने बच्चों को प्रोत्साहन देना है, न कि मोह रखना है, है ना। और नष्ट मोह बनकर के बाबा के ऊपर सौंपना है, तब उनकी भी जीवन बनेगी और हम भी एकदम निश्चिंत रहेंगे, खुश रहेंगे। ऐसे ये बताने के लिए मैं खास आई, क्योंकि बाबा ने एक दिन मुरली में भी कहा ना कि बच्चों की दिल होती है लेकिन माँ बाप का मोह होता है, और मोह के कारण वो उनको पीछे खींचते हैं। और शुभ भावना या शुभेच्छा वही ना। और छोटेपन से जैसे पालना तो करने का मुझे इतना टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि मैं भी जॉब करती थी और दिन भर स्कूल रहती थी, लेकिन बच्चों को कोई भी ऐसे अलग से गलत माना ये नहीं लगी, क्योंकि छत्र छाया बाबा की थी। जहां भी पढ़ने को गए वहां बड़ों की पालना, दीदियों की पालना मिलती रही। अपने महाराष्ट्र जोन के संतोष दीदी जी है, तो ये 11वीं से लेके बॉम्बे में गए, लेकिन दीदी ने ऐसी पालना की, कह रही तुझे कुछ तकलीफ हो रही क्या, रैगिंग हो रहा क्या, मैं तो तुम्हारे डीन से बात करती, बोले मेरी अच्छी तरह पहचान है, तुम बिल्कुल डरना नहीं, ऐसे माना एकदम प्रोत्साहित करते रहे ऐसे। और बच्चे छोटे थे तो गीत याद आ रहा मुझे, जैसे अभी तो बाबा मिल गए, लेकिन मैं ऐसे बच्चों को सुलाते समय वगैरह वगैरह ऐसा 2-4 लाइन बोलती थी, देव जरी मज कधी भेटला, माग हवे ते माग मनाला, म्हणेल प्रभु रे माझे सारे जीवन देई मम बाळाला। तो बस इतना ही कहती, इससे और ज्यादा क्या कहूँ, है ना। तो वो ऐसे जैसे माना वो गीत जो है ना, वो गाते गाते ही बच्चे बड़े हो गए, कब मुझे ही पता नहीं पड़ा, है ना। चलो ठीक है, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति। तो सभी ने तो मैं ऑलरेडी बोल दिया, दीदी ने बोला है, वो सभी ने अच्छा अच्छा हम सब ने अच्छा बोल दिया ऑलरेडी, तो और सबको लेट भी हो रहा है, तो और सभी ने भाई जी को भी लेट हो रहा है नहीं, तो सभी ने भट्टी बहुत बहुत एंजॉय की। तो मेरी यही शुभाश है कि हर घर का बच्चा बाबा का बना रहे, क्योंकि मैंने वही डिस्कस कर रहा था कि जो रिसेंट 15-20 साल है और उसके पहले के 15-20 साल है और फिर और भी पहले के, तो उसमें काफी डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग कि आजकल सेंटर पर रहना या समर्पित होना या फिर बाबा का बनकर भी रहना, ये बहुत रेयरली दिखाई देता है। लेकिन उसके पीछे दोनों बातें हैं, एक है अपने माता पिता का भाव अंदर का कि मेरे बच्चे कैसे बने। अगर भाव ही ऐसा होगा कि ठीक है चलेगा शादी कर लेंगे फिर भी उनका सेट हो जाएगा फिर आते भी रहेंगे, तो फिर तो वैसे ही होने वाला है। और अगर भाव ऐसा है कि नहीं ये बनने ही चाहिए, बाबा के बने रहने ही चाहिए, तो फिर वो बने रहते हैं, एक पार्ट। और सेकेंडली बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, उनको IQ बहुत है, अच्छा IQ होता है, तो उनको हम ये ज्ञान की बातें समझाए, वो भी उनकी जो जनरेशन है वो हिसाब से, साइंटिफिक समझाएं तो जरूर सुनते हैं और समझते भी हैं, फिर आगे उनका पार्ट है, ठीक है। लेकिन हमने 100% ये एफर्ट लेने चाहिए हमारी तरफ से। तो आप सभी के फैमिली के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं होगी कि आपके घर का हर एक मेंबर ये बाबा का बने, क्योंकि अभी समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। मेडिकल साइंस साइंस सब कुछ ये कह रहा है अभी कि अभी टाइम इज ओवर, ये साइंटिफिक है। वो बाद में कोई बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो हम ये बच्चों को भी समझाएंगे सेंटर पर लाकर कि ऐसा ऐसा है, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है ये स्पिरिचुअलिटी। तो आपको आग्रह होगा कि आप उनको भेजें, ठीक है। और आपने बहुत एंजॉय भी किया, तपस्या भी की, भरपूर भी हुए, आनंद भी लिया। तो सब ऑलराउंडर भट्टी थी हमारी सबकी, तो ऐसी भट्टी हमारी हमेशा चलती रहे उसके लिए भी शुभेच्छाएं। और जीतू भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की, और खास करके दीदी जी को बहुत बहुत थैंक्स जो उन्होंने सब कुछ अरेंज किया। थैंक यू ओम शांति, और बाबा का भी थैंक्स।